282 से देखेंगे। पीछे हमने देखा कि सूद के बाद कर्ज की बात थी, अब यहाँ कुरान पाक की सबसे तवील तरीन आयत है कि जिसको आयत दैन भी कहते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसकी मुख्तसर सी वजाहत होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फ़क्तुबूह। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो इसे लिख लिया करो। ईमान वालों को पुकारा जा रहा है और कर्ज लेने देने के तरीके बताए जा रहे हैं। यहां से आप इस किताब की हक्कानियत को देखिए कि यह किताब कितनी थिंग्स टू डू किताब है। आज बहुत सारे लोग कुरान पाक को सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, बाज़ दफ़ा मिलजुल के पढ़ते हैं, बाज़ दफ़ा वज़ायफ़ के तौर पर पढ़ते हैं। जब भी कभी कोई ऐसी मैं आयत पढ़ूं तो मैं सोचती हूं कि अगर ये कुरान पाक सिर्फ पढ़ने की किताब होती, सिर्फ इसके एक एक लफ्ज़ से 30 नेकियां या 70 नेकियां लेनी होती या 10 नेकियां लेनी होती, और इसी तरह से इस किताब से अगर सिर्फ हमने कुछ और ही फायदे लेने होते तो क्या ज़रूरत थी इस आयत की कि जिसमें इतनी डिटेल्स। इसी तरह की बहुत सारी आयतें हम पढ़ेंगे। तो इस वक्त यहाँ ये दुआ कर लीजिए कि अल्लाह मुझे अब जल्दी से कुरान पाक की हर वो आयत जिसमें अमल करना है उसकी समझ दे दे। और अमूमन ये वो आयात हैं कि जिनके ऊपर कोई गौर भी नहीं करता और बाज़ दफ़ा दर्स भी इन पर नहीं दिए जाते। हालांकि आज के दौर में सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है इंटरेस्ट के बाद जो इकोनॉमिकल है वो क्रेडिट कार्ड्स हैं। ये आयत इतना खूबसूरत तरीके से उसके ऊपर हमारी गाइडलाइन करती है, लेकिन हम इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं कि सपारा पूरा होने लगा है, सूरत पूरी है, जल्दी पढ़ लो। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें किताब के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब दोबारा इस आयत को शुरू से सुनिए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो। पहली बात, कर्ज लिया दिया जा सकता है तो इसे लिख लिया करो, यह है पहली शर्त। फरीकैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज तहरीर करे, यानी डॉक्यूमेंटेशन करो। जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत हो इसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जिस पर हक आता है, यानी क्या पता चला कि कर्ज लेने वाला लिखवाएगा। और इसे अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए, जो मामला तय हुआ हो इसमें कोई कमी बेशी न करे, यानी जितनी फिगर है जितनी रकम है उसमें कुछ कम या ज्यादा ना हो। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या ज़ईफ हो या इमला ना करवा सकता हो तो इसका वली इंसाफ के साथ इमला करवाए। के बाद ऐसे हालात होते हैं कि इंसान अपनी बात पेश नहीं कर सकता, गूंगा हो सकता है कुछ भी, तो ऐसे वक्त में फिर कोई अपना थर्ड पर्सन वो अपनी तरफ से मुकर्रर कर सकता है। वस्तशहिदु शहीदैनि मिन रिजालिकुम, फिर अपने मर्दों में से दो मर्दों की इस पर गवाही करा लो, और अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें हों, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी इसको याद दिलाए। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान काबिले कबूल हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो इन्हें इनकार नहीं करना चाहिए, मामला ख्वाह छोटा हो या बड़ा। मियाद यानी वक्त की तायुन के साथ इसके दस्तावेज लिखाने में सुस्ती ना करो। अल्लाह के नजदीक ये तरीका तुम्हारे लिए ज्यादा इंसाफ पर मबनी है, इससे शहादत कायम होने में ज्यादा सहूलत होती है और तुम्हारे शिकों को शुभात में मुबतला होने का इम्कान कम रह जाता है। हाँ, जो तिजारती लेन देन दस बदस तुम लोग आपस में करते हो इसको न लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर तिजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो। कातिब और गवाह को सताया न जाए, अगर ऐसा करोगे तो गुनाह का इर्तकाब करोगे। अल्लाह के गजब से बचो, वो तुमको सही तरीके अमल की तालीम देता है और इसे हर चीज का इल्म है। और अगर इसके बाद की एक और कैफियत, कर्ज कोई ना दे तो प्लेजिंग यानी मॉर्गेज यानी कुछ रखवा कर अपना देना, जिसको रहन कहते हैं, वो अगली आयत में मौजूद है। वइन कुंतुम अला सफरिन, अगर तुम सफर की हालत में हो और दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई लिखने वाला ना मिले तो रहन बिल कब्ज और मामला कर लो, यानी अपनी कोई चीज उसके पास छोड़ दो और उसके बाद वो तुम्हें कर्ज दे देगा। फैनवीना बादुकुम बादन, फिर अगर तुम में से कोई एक शख्स दूसरे पर भरोसा करके इसके साथ कोई मामला करे तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह यानी अपने रब से डरे, और गवाही यानी शहादत को हरगिज न छुपाओ। जो शहादत छुपाता है इसका दिल गुनाह में आलूदा है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। यहाँ पे मनी मैटर्स पूरे हुए। सूरत बकरा की नायात की रोशनी में खुलासा कर देती हूँ। सबसे पहले सदकात की बात हुई, अल्लाह ताला ने बात का आगाज ही किया कि उस दिन से पहले खर्च कर लो कि ला बैयुन फी की वला खुल्लतुन, यानी तुम्हारे पास जो अल्लाह की दीवी नेमते हैं इसके लिए एक खास वक्त है, अपनी जरूरत भी पूरी करो वो भी सदका है, लेकिन उसके बाद दूसरों की भी जरूरियात पूरी करो, इंसानों की भूख मिटाओ, उनकी परेशानियां दूर करो, बीमारों की बीमारियां दूर करो, और इसी तरह फी सबीलिल्लाह में खर्च करोगे तो तुम्हारा अपना माल ज्यादा फैलेगा। پھر اس کے بعد سود کی بات ہم نے دیکھی. ہم نے اس دفعہ صرف قرآن پاک کی آیت کو دیکھا. انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں نیکسٹ آئے گا تو وہاں مزید تھوڑی ڈیٹیلز دیکھیں گے. لیکن آج کے دور کا طاغوت جو ہے وہ انٹرسٹ ہے, اکنامیکل ٹیررزم جو آج ہمیں پوری دنیا میں دکھتا ہے, چاہنے کے باوجود ہم نکل نہیں پاتے. ایک ایسا وشیس سرکل ہے کہ جس کا نقطۂ آغاز بچے کے تعلیم لینے سے یعنی اسٹڈی لون سے شروع ہوتا ہے, اور وہ بچپن, وہ معصومیت 16-17 سال کی عمر جس میں لڑکیوں کے کہہ کہے اور کھل کھلانا پچھلے دور میں کبھی چڑیوں کے چہچہانے سے تعبیر کیا جاتا تھا, لاوبالی پن تھا, بھولا پن تھا, معصوم تھا. آج آپ اپنے یوتھ کو دیکھیں تو ان بیچاروں کے چہروں پہ وہ خوشی نہیں ہے جو کبھی شاید آج سے 20-25-30 سال پہلے آپ کے چہروں پہ تھی. وجہ کیا کہ ان کے معصوم کندھوں پہ اتنا بوجھ ڈال دیا, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو لون لیا اب یہ 25-30 سال میں کمائی کر کے اتارنا ہے, پھر اس کے بعد جاب, پھر آفس, پھر اس کے بعد پھر گھر, پھر گاڑی. ایک ایسا وشی سرکل ہے کہ جس نے آج جمعت وسط کا بھی حلق جو ہے وہ دبایا ہوا ہے. یاد رکھیے میں اور آپ اس کو اس طرح بدل نہیں سکتے, لیکن ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو گائیڈ لائن دی ہے. جب ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں گے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہوں گے, تو ہمارے لیے ان باتوں کو ماننا مشکل نہیں ہوگا. الحمدللہ آج بھی ایسے لوگوں کو ہم خود جانتے ہیں کہ جو ایک پینی کا مقصود نہیں ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اپنے گھر ہیں لیکن انٹرسٹ فری ہیں. یہ نہیں سوچئے کہ یہ ہو نہیں سکتا, پھر تو ہم اللہ پہ زیادتی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ کہ ایک چیز جس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا اللہ نے اس کو روک دیا. پھر اس کے بعد جہاں ہم نے آیت دین میں تیسری فارم دیکھی کہ سود نہیں لینا چاہتے تو کیا کریں, پھر قرض لے لو, چند بہن بھائی مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر ایک بہن کو گھر لے دیں, پھر وہ اس کو پیسے دے, پھر جب تو باقیوں کی سٹنگ ساری جمع, پھر وہ دوسرے بھائی کا گھر لے لے, وہ جو لون ادھر دینا تھا وہ آپس میں لون لے لو. اور اس میں مسلمانوں کے دل کھلے ہونے چاہیے, اپنی منی کو ری انویسٹ کر کے اب اس سے پھر کمانے کی بجائے اپنی بہن کی مدد کرو, بھائی کی کرو, اپنے دوستوں کی کرو. 101 طریقہ نکلے گا. اصل یہ کہ جب ہم بچنا چاہیں گے. قرض کے لیے دو بڑی چیزیں ہم نے دیکھی. نمبر یہ کہ اس کے لیے دو گواہ ہونے چاہیے, دوسری بات یہ کہ اس کو لکھنا چاہیے, تیسری بات ہے کہ وہ لکھوائے گا. آج آپ دیکھیں جب بینکوں سے لون لیا جاتا ہے سراسر اس قانون کے خلاف ہے, سب ڈاکیومنٹیشن بینک کی طرف سے آتی ہے حالانکہ وہ لون آپ کو دے رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے جو لے رہے وہ لکھے, کیونکہ وہ غلطی نہیں لکھے گا, وہ زیادتی نہیں کرے گا. بعض دفعہ دیکھا گیا لوگوں سے خاموشی سے ایسی ایسی جگہوں پہ سگنیچر کروا لیے جاتے ہیں, ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بعد میں جب بات پڑتی ہے کہ یہ کیا ہوا تو کہتے ہیں آپ نے تو خود سائن کیے تھے پیپرز پہ. تو لہٰذا یہ ایک خفیہ طریقے ہیں جس پہ اس وقت حقیقت میں کمپین چلانے کی ضرورت ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ اسلام کا کہتا ہے کہ 2/3 یا 1/3 جو ہے وہ صرف منی میٹر سے ریلیونٹ ہے. ہوگا کیا, طریقہ کیا, امت وسط کے ناطے میرا آپ کا کیا کردار ہے؟ نمبر ایک, اپنے بچے جو چھوٹی عمر میں ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالیں, ان کو اسلام کا طریقہ سکھائیں. 15-16 سال کی عمر تک وہ قرآن کی یہ ساری آیتیں سمجھ چکے ہوں, پھر آپ ان کو ایم بی اے میں ڈالیں, اکنامکس پڑھائیں. اس وقت ہماری یوتھ کو جو سبجیکٹ لازمی لینا چاہیے وہ اکنامکس ہے. پہلے وہ سیکھیں بینکنگ کیسے ہوتی ہے, سسٹم کیا ہے. جب ادھر سے دنیا کی تعلیم لیں گے, دوسری طرف قرآن اور ماں کی طرف سے دین کی اصل چیز ہوگی, انشاءاللہ 10-15-20-25 سالوں کے اندر ہم اپنے سسٹم ڈیولپ کریں گے. جب ہم کام نہیں کریں گے تو ہم انہی کے ساتھ رہیں گے. اور آج اگر کچھ بچے ایسے سبجیکٹس پڑھ بھی رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, وہ پھر اسی سسٹم کا حصہ ہو جاتے ہیں. پھر لوگ سوال کرتے ہیں اچھا یہاں جاب کریں کہ وہاں کریں. تو ایک بڑی سوچ لے کے اپنے بچوں کو اسٹڈی کروائیں گے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد آخری صورت ہم نے دیکھی کہ کوئی پیسے بھی نہیں دیتا تمہیں, قرض نہیں دیتا تو تم اس سے اپنی کوئی چیز رکھوا لو رہن پہ. اور حقیقت یہ کہ ہمارا نبی, جس کو آپ کہیں کہ اگر وہ چاہتے تو دنیا کے بادشاہ ہوتے, جن کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ کر کہا کرتے تھے کہ نبی اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا ہو جائے, اگر آپ چاہیں تو آپ کا گھر سونے کا بن جائے, تو آپ کہتے تھے کہ نہیں, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن میں خالی پیٹ رہوں. مجھے دنیا میں بہت زیادہ کھانا نہیں چاہیے, رزق کی کفات چاہیے. وہ نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی بیویوں کی یہ گواہی ہے کہ جو تیل اس وقت جل رہا تھا وہ بھی آپ کی زرہ مبارک ایک یہودی کے پاس رہن رکھ کر وہاں سے لیا گیا تھا. جب نبی کی زندگی اس طرح کی گزری تو کیا وہ کامیاب نہیں تھے؟ کیا آج 1400 سال گزرنے کے بعد ان کا نام نہیں ہے؟ کیا خوشی نہیں تھی؟ آپ تو اتنے خوش اور اتنے فرینڈلی تھے. کیا آپ کے ازواج کہتی ہیں جب گھر میں ہوتے تو ہمارے ساتھ کھیلتے, ہمارے ساتھ کام کرواتے. آج مرد وقت سے پہلے بوڑھے کیوں دکھتے ہیں؟ آپ نوٹ کیجئے کہ 40-50 سال کی عمر میں اکثر بردر ہارٹ پیشنٹ, شوگر پیشنٹس, کیا پریشانیاں, لائبلٹیز, ازمائشیں. اگر ہم عورتیں تھوڑا سا اپنا من ماریں, اگر ہم خواتین اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ حقیقت میں ہم نے اپنے مردوں کا ساتھ دینا. میرا نہیں خیال کہ شاید 5% مرد چاہتے ہوں گے ان چیزوں میں کودیں اور پھر ان مشینوں کی طرح کام کریں, راتوں کو کام, دن کو کام, फिर वीकेंड पे काम, सुख नहीं, चैन नहीं, तो दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें बेहतर रास्ते सुझा दे। अब हम पढ़ेंगे आखिरी दुआएं, पूरी सूरत हमने पढ़ ली। जहन में फिर रखिए कि मक्का से मदीना का सफर है, मदीना के अंदर ये सूरत नाजिल हो रही है। अब मुसलमानों को वाकई फिर एक मोटिवेशन देने की जरूरत थी, तो ये वो आखिरी आयतें कि जिसके बारे में आपने बहुत सारी फजीलतें सुनी होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रात को पढ़ा करते थे। ये अर्श का खजाना है, मैं और आप जमीन के इस टुकड़े पे बैठ के पढ़ने लगे हैं, लेकिन जब पहली दफा ये आयत नाजिल हुई थी तो आसमान से उतरी थी, मेराज के मौके पे अल्लाह के नबी को दी गई, तो यकीनन फिर इनमें कोई बात तो होगी ना। तो आइए देखते हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमानों और जमीन में। 3 सेकंड तक इस आयत को हाईलाइट करके गौर करें। हम कहते हैं बैंकों का है, हम कहते हैं वेस्ट का है, हम कहते हैं अमीर लोगों का है, हम कहते हैं चंद खानदान है जिनके पास सब कुछ है। नहीं, 3 दफा इस आयत को दिल में सोचें। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आपको अपना दिल खुलता हुआ दिखेगा, तो सब कुछ जिसका है उससे मांगेंगे, उसके तरीकों से लेंगे, तो ज्यादा खुशी मिलेगी या दूसरों से लेने में। वहीं तुब्दु मा फी अन्फुसिकुम व तुख्फूहु, तुम अपने दिल की बातें ख्वाह जाहिर करो या छुपाओ उनको। युहासिबकुम बिहिल्ला, अल्लाह बहरहाल इसका हिसाब तुमसे लेगा। फिर इसे इख्तियार है जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये है वो आयत का टुकड़ा जिसने सहाबा को परेशान कर दिया, रोने लगे। अल्लाह के नबी, दिल की बातों का भी हिसाब होगा। अल्लाह के नबी, हमारा तो दिल पे कंट्रोल ही नहीं है, क्या करें? क्या मुझे और आपको इन आयतों को पढ़कर कुछ हरकत महसूस होती है? क्या हम हकीकत में इन चीजों को देखते हैं? आखिर कुरान की वो आयत उतर गई, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, चलो जितना अल्लाह से डर सकते उतना तो डर लो। वो कुरान को अपने दिल पे लेते थे, हम जहन पे या जुबान पे लेते हैं। फरमाया तुम अपने काम करते रहो, और सहाबा कराम का हाल क्या था कि हिसाब किताब का खदशा उनको खौफसदा कर देता था, हर वक्त दुखी रहते थे। इतनी तकलीफ थी उनके दिल में इस चीज की कि हाय हमारे साथ कल होने क्या वाला है। आज कुरान के कुरान खत्म हो जाते हैं, हमारे दिल की कोई कैफियत नहीं होती। उमर बिन अब्दुल अजीज एक बहुत बड़े खलीफा गुजरे, अल्लाह से भी डरने वाले थे, अल्लाह ने दुनिया भी बहुत दी हुई थी, रातों को उठ उठ के बैठ जाते थे और बीवी पूछती थी क्या हुआ, कहते थे मुझे खौफ आता है कि कल क्यामत के दिन अल्लाह जब मुझसे नेमतों का पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आप पर मैं सोचें, हम कैसी ही ठान के सोते, हमें भी रात को नींद नहीं आती, हिसाब किताब से नहीं, हमें कुछ और गम है, दुनिया की चीजें कुछ और। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें ख्वाब दे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा किसी चिड़िया को देखती तो कहती, काश आयशा तो चिड़िया होती, मरती कुंती नसीया मनसिया, मरती और भूली बिसरी होती, कोई तेरा नाम ना दुनिया में रहता, खत्म होती। हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनको दुनिया में खुशखबरी है, रादिया तम मर दिया, रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्, कितने टाइटल है, कहीं अशरे मुबशरा में, कहीं फरमाए उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, कभी अल्लाह ने कह दिया उस्मान आज के बाद कोई नेकी ना भी करे तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया, और कभी अल्लाह ताला ने 313 बदरी सहाबा को कह दिया कि देखो आज के बाद कोई नेकी ना भी करो तो तुम्हें जन्नत है। इसके बावजूद वो रोते थे, परेशान थे। इसी तरह एक और इमाम थे, अपने वक्त रातों को उठ के तो अपने हाथों को टटोल करते, ऐसे हाथ फेरते। उनकी बीवी ने कहा ये आप क्या करते हैं? कहते मुझे खौफ लग जाता है कि कहीं मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मेरे जिस्म को मस्त तो नहीं कर दिया, कहीं मेरे हाथ मेरी चीजें चली तो नहीं गई। तो जितना हिसाब किताब का खौफ होगा उतने हमारी जिंदगी के मामले बेहतर होंगे। हम इस दुनिया में खूब से खूब तर की तलाश में ऐसे भागते हैं कि फिर अल्लाह की पनाह कहीं जाके रुकते ही नहीं है। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हम सब को इसके ऊपर अपने आप को बेहतर तरीके से चलने वाला बना दे। और याद रखिए कि हिसाब को दुनिया के किसी हिसाब से ले लें। आपने यहाँ से यूरोप का सफर करना होगा ना, तो 3 दफा अपने सूट केसेस को चेक करके जाते हैं, उनका वजन चेक करते हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं। एक पानी की बॉटल भी अगर आप गलती से अपने हैंड कैरी में ले जाएं, आपके सामने वो ट्रैश कैन में फेंक देते हैं, आप जितना मर्जी रोएं। लोगों कितने महंगे परफ्यूम्स वहां गिरते हुए देखे हैं, उस वक्त कोई कुछ नहीं कर पाता। क्यामत के दिन क्या होगा? हम सब अपने आप को सोचें, मेरा हिसाब का पर्चा कैसा होगा? और याद रखिए हमारे हिसाब का पर्चा कोई ऐसा नहीं कि बस एक ओवरऑल रफली मार्किंग होगी, एक एक पर्चा होगा। जैसे आपके दुनिया में हिसाब किताब होते हैं, साइंस के अलग नंबर, फिजिक्स के अलग नंबर, आपके मैथ के, हिस्ट्री के नंबर है। क्यामत के दिन मेरा और आपका हर पर्चा चेक होगा, हुकूकुल्लाह का पर्चा, हुकूकुल इबाद का पर्चा, मनी मैटर्स का पर्चा, हमारे एज अ बीवी होने का पर्चा, माँ होने का पर्चा, कहाँ कहाँ फंसे होंगे। मैं सोचती हूँ कि जितनी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं उतना इंसान खौफ करता है। तो दुनिया की लायबिलिटी से बचने के लिए इंसान अगर अपना हिसाब खुद करता रहे तो अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करेगा। आमनर रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, रसूल इस हिदायत पर ईमान लाया जो इसके रब की तरफ से इस पर नाजिल हुई है। यह है बेहतरीन अमल, जिस चीज की दावत दूसरों को दे रहे थे खुद पहले लेकर आए ईमान। और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दिल से मानने वाला बना दे। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और इसके रसूलों को मानते हैं। हमने सूरत के शुरू में पढ़ा यू मे नू न बिल गई, वहां ईमान मुजमल था, यानी इन शॉर्ट था, समरी थी, कंसाइज किस्म की बात थी। यहाँ आप देखिए सूरत के खात्मे पर डिटेल है गैब की कि ये सब चीजें गैब में, ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके रसूलों को मानते हैं। और इनका कॉल क्या है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते, हमने हुक्म सुना और इताअत कबूल की। इसको हाईलाइट करिए, समेना वातौना। ये था सहाबा में और हम में फर्क। जो आयत सुनते थे कहते थे ओके अल्लाह, ठीक है अल्लाह, यस सर, यस मालिक, फाइन, आई विल डू इट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल डू दिस। साथ ही फिर कहते थे रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना। सात नियतें ईमान की थी, कोशिशें भी थी, सब कुछ था, लेकिन इसके बाद गुफरान कर रब्बना वलैकल मसीर, एला सब कुछ करने के बावजूद हम तुझसे खता बख्शी के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ आना है। ये जो लफ्ज है ना गुफरान का, ये भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। बजाय इसके कि ये कहना कि फिर लना, हमें बख्श दे, फिर ली, मुझे बख्श दे, ये कहा गुफरान। गुफरान मस्तर है, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि कोई कहे पानी दे दो, पानी दे दो, अब ये कि पानी मांगा आपने, और कोई कहे पानी पानी पानी, तो शिद्दत है ना कि आवाज भी नहीं निकल रही उसकी पानी के लिए। गुफरान यही लफ्ज है। और हकीकत है कि एक ईमान वाले को अपने गुनाहों का गम इतना लाहक होता है, इतना वो इससे जेरे बार होता है कि अपने आप को दुखी महसूस करता है, उसके मुंह से बात नहीं निकलती। आज तुम हंसते झूलते अपने आप को उछालते हुए अपने गुनाहों का जिक्र करते हैं, फिर कहते हैं तौबा तौबा, अल्लाह माफ करते, बड़ा डर लगता है अल्लाह से, झूठ बोलते हैं हम। जिसको गुनाह का गम लग जाता है ना, फिर उसको रातों को नींद नहीं आती। किस तरह वो गामदिया कबीले की एक औरत कि जिससे जिना हुआ, बार बार नबी सल्लम के पास आ रही है कि अल्लाह के नबी जिना हो गया, गुनाह हो गया, अब मुझे हद लगा दें। आपने इग्नोर किया, आप ऐसी बातों को ज्यादा नहीं सुनते थे, लेकिन कहा अल्लाह के नबी पेट में अब बच्चा है, कहा फिर बच्चा आएगा तो फिर आना, उसका क्या कसूर है, बच्चा पैदा हुआ फिर आती है, कहा इसको दूध कौन पिलाएगा, जब खाने के काबिल होगा फिर लाना। और रिवायत में तो चंद माह के बच्चे को वो औरत हाथ में रोटी का टुकड़ा देकर लाती है, कहती है अल्लाह के नबी अब हद लगा दें। चैन क्या नहीं आ रहा कि अगर इस हाल में मर गई इस गुनाह के साथ जिस पे हद है, जो कबीरा गुनाह है, तो मैं कहां जवाब दूंगी। यानी दुनिया की फिक्र नहीं, बच्चे की फिक्र भी नहीं कि न्यू बॉर्न है अब इसका क्या होगा, फिक्र यह है कि अगर इस हाल में मर गई अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। अब फिर सुने गुफरान का रब्बना वलैकल मसीर, वो कोई एक गुनाह करते थे उसकी बात कुरान में आ गई, हदीसों में आ गई, वाकयात में आ गई। आज हम सोचिए कि हम तो गुनाहों के गुनाह करके भी परेशान है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गुनाह एक गंदगी है, आप जब नहाते धोते हैं ना साफ सुथरे, जैसे अभी सुबह आप में से सारे ही तकरीबन शावर लेके आए होंगे, अब आप बहुत केयरफुल हैं, पसीना नहीं आने देंगे, आप मट्टी में पाँव नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप साफ हो गए। लेकिन जब आप घर में काम करते हैं और पसीना भी आ गया, कुछ खाना भी ऊपर गिर गया, फिर आप क्या कहते हैं, चलो इट्स ओके, केयरलेस हो जाते हैं, आप कहते हैं अब गंदे तो हो ही हैं, चलो अब ये भी कर लें, वो भी कर लें, एक ही दफा शावर लेंगे। इसी तरह से इंसान की नेकियों और बदियों का मामला है। जो इंसान तौबा के पानी से गुसल कर लेता है फिर वो अपने आप को पाक रखता है, फिर वो छोटे छोटे गुनाह पे अलर्ट होता है, उसके अंदर एक बीप लग जाती है, बीप बोलती है उसको, एक इमरजेंसी वार्निंग अंदर से आती है कि स्टॉप, बड़ी मुश्किल से तौबा की है, रातों को रो रो के अल्लाह को बनाया। लेकिन जब इंसान एक गुना फिर दूसरा गुना, फिर कह लेट्स सी सब करते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, जैसा देश वैसा भेस। तो याद रखिए कि ऐसे लोग जो होते हैं फिर वो कभी खुश नहीं रह पाते। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी कुदरत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर शख्स ने जो नेकी कमाई है इसका फल इसी के लिए है, और जो बदी समेटी है इसका वबाल इसी पर है। इसको नोट कीजिए, कोई मेरा बोझ नहीं उठाएगा। देखिए आप बाहर देखते हैं ना, दुनिया में कोई काम कर रहे हैं, आपका वजन कई लोग उठाने को तैयार है, आपका हैंडबैग उठा लेगा आपका कुछ, लेकिन आप एयरपोर्ट्स पे हो, आपको अपना सफर खुद उठाना है, अपना वजन खुद उठाना है। कई ऐसे मकाम है आपको अपने जिस्म का वजन तो खुद ही उठाना पड़ता है ना। बचपन में माँ बच्चे को उठा लेती है, लेकिन बड़े बच्चे को माँ नहीं उठाती, वो नहीं चल सकता उसको बैठना पड़ेगा, वो बैठ नहीं सकता उसको लेटना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन जब हम रब के दरबार में जाएंगे, हम अपने ही अमाल के बोझ से लदे होंगे। एक तो गुनाहों का बोझ, एक है एक्सेसिव वर्ल्डली थिंग्स का बोझ, ये दोनों मुख्तलिफ बोझ है। और क्यामत के दिन हदीस में आता है कि लोगों के कंधों पे बोझ होगा, किसी के कंधे पे बकरी होगी, किसी के गाय होगी, किसी के ऊंट होगा, किसी के पे बकरियों की लाइनें लगी हुई हैं, ऊपर कतारें, क्यों? कि गुनाहों को अल्लाह एक जिस्म दे देगा। आज भी अल्लाह ना करे बैठे बैठे बाईं तरफ थोड़ी सी दर्द महसूस हो या बाजू भारी हो, पहला ख्याल क्या आएगा? शायद हार्ट अटैक होने लगा है, शायद ब्लड में क्लॉट आ गया, क्या हुआ है? लेकिन कितने लोगों को सो ख्याल आता है कोई इतना बड़ा गुनाह किया कि बाई साइड जो मेरी गुनाहों से भर गई है। तो अपना हिसाब जब करेंगे इंशाल्लाह हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी और अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोलेगा। फिर फरमाया, ईमान लाने वालो तुम यूं दुआ करो। अब यहां समझिए बिल्कुल उसी से मिलती जुलती दुआ जो दूसरे पारे के एंड पे आपने पढ़ी तालूत और जालूत के किस्से में, वो बनी इसराइल की बदर थी, अब यहाँ अपनी बदर है। मदीना में आ चुके हैं, गज़वे बदर होने वाली है, मुसलमानों को दुआएं सिखाई जा रही हैं कि देखो दुआ मांगो के रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वख्ताना, ए हमारे रब हमसे भूल चुक में जो कसूर हो जाए इन पर हमारी गिरफ्त न करना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, मालिक हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाल दिए। आपको था कि पहले लोगों की शरीयत कितनी मुश्किल थी, यहूद में तौबा का कॉन्सेप्ट किया था, अपने पीछे थोड़ा सा पड़ा, कत्ल करना पड़ा खुद को, कपड़े पे अगर निजासत लग जाती उतने हिस्से को काटना पड़ता, कच्चे गोश्त में से चर्बी पूरी की पूरी निकाल के खाते थे, यानी गोश्त हलाल था चर्बी हराम थी। आज हमारे लिए कितनी आसानी है, और अल्लाह ने वाकई ये दुआ कबूल कर ली, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बी, रब हम जिस बोझ को उठाने की ताकत नहीं रखते वो हम पर न रखना, वाफ अन्ना हमारे साथ नरमी कर, वाग़फिर लना और हमसे दरगुजर फरमा, और रहमना और हम पर रहम फरमा, अंत मौलाना तू हमारा मौला है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, बस तू दुश्मनों के मुकाबले में काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ये है गलबे की दुआ। आज उम्मत मुस्लिमा को इन गलबों की दुआएं मांगने की जरूरत है। कल तो बदर के मौके पे सिर्फ 1000 से मुकाबला था 313 का, आज आप देखिए तो हजारों लाखों दुश्मन आपको अपने इर्द गिर्द दिखेंगे। अगर इस वक्त हम इन दुआओं को अपनी हिर्से जान बनाएं और वो सारे काम करें जिन कामों के करने का हमें इशारा मिलता है, तो आप देखिएगा कि आज भी अल्लाह ताला दुश्मनों के मुकाबले में हम मुसलमानों को काफी होगा। और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमारी कवाख्तों और हमारी बदबख्तियों पर दूसरों को ना पकड़ना। हम सब मिलकर जैसे तिलावत के तौर पर करते थे, अगर आप सब मेरे साथ शुरू कर लें इस सोच के साथ कि हम दुआ मांगेंगे। अब हम कुरान की तजवीद नहीं कर रहे, हम कुछ और नहीं कर रहे, बल्कि सारे अपने इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के हालात को सामने रखेंगे और उस पे दुआ करेंगे कि अल्लाह शायद हमारी रोजे की हालत में रमजान के इतने खूबसूरत दिनों में इस वक्त हम बहनों का मिलकर इस दुआ को मांगना उम्मत मुस्लिमा पर आने वाले किसी फितने आजमाइश को जो आने वाले दिनों में आने वाला था उसको अल्लाह ताला दूर करने का जरिया बनना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आइए यहाँ से पढ़ेंगे आयत नंबर 285 से शुरू करते हैं। لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وتاب إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا وعفو عنا